आज का जो टॉपिक जो नक्की किया गया है वो भी कल बाबा ने जो कहा हुआ है इस वर्ष क्या करने का है, सफल करो और सफलता है ही है, इस प्रकार से है ही है, इस प्रकार से एकदम फोर्सफुली उस प्रकार की बात होनी चाहिए। जैसे शास्त्रों में एक कहानी है कि एक पंडित जो थे वो कहते थे कि वेद जो है ना वो शाश्वत है। कुमारिल भट्ट की बात है, कुमारिल भट्ट के बारे में कहानी ऐसी है कि वो मानते थे कि वेद शाश्वत है और अपौरुषी है। तो एक राजा ने कहा कि कैसे हम माने, तो कहा कि मैं फोर्थ मंजिल जो है चौथी मंजिल से भी अगर गिरूंगा और मेरा पांव नहीं टूटेगा। तो उसने कहा ठीक है, तो ऊपर जाकर के वो खड़े रहे और ऊपर से जंप लगाया। जंप लगाने से पहले उसने कहा कि अगर वेद शाश्वत है अपौरुषेय है तो मैं अगर गिरूंगा तो मेरे पांव नहीं टूटने चाहिए। परंतु ऊपर से गिरे और उनके पांव टूट गए, तो उनको खुद को प्रश्न हुआ कि ये कैसे हुआ। हाँ, तब लेखक ने वाक्य कहानी है, दंत कथा है, बाबा ने भी आज मुरली में कहा, इसी दंत कथा में यही है कि दंत कथा के अंदर उसकी आकाशवाणी हुई और उसमें यही कहा कि आपने पहले क्यों ऐसा बोला कि अगर वेद शाश्वत है और अपौरुषेय है, तो आपने अगर बोल करके अपनी खुद की शंका उसके अंदर प्रस्तुत की, इसके कारण आपको इसकी सजा भोगनी पड़ी। तो उसी प्रकार से ऐसा ही यहाँ पर भी ऐसा ही, इसलिए बाबा ने कहा कि सफल करो और सफलता है ही है, मतलब सफलता होने वाली ही है, उसके अंदर कोई भी बात की 19-20 का भी फर्क नहीं होने वाला है। बाबा ने जो कल जो कहा इसके बारे में एक बात समझने जैसी है कि इतने साल के बाद बाबा ने पहली बार क्यों ऐसा कहा सफल करो और सफलता है ही है, क्यों कहना पड़ा। बाबा एक आदर्श शिक्षक भी, आप जानते हैं बाप टीचर और सदगुरु, सदगुरु की मुरली आपने सुनी होंगी, बाकी सबको गुरु कह सकते हैं। हम बाबा ने कहा ना कि सदगुरु का अर्थ ये भी है सत्य बताने वाला गुरु है, और दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है जो मैंने सोचा है कि सदगुरु वो है कि जो सत्यों की स्थापना कर सकते हैं, वो है सदगुरु। तो इस प्रकार से सदगुरु भी है। तो बाबा एक आस्ते आस्ते हर बात की हमारी श्रद्धा जो है, हमारी विचारधारा जो है उसमें आस्ते, जैसे आदर्श शिक्षक जो होता है हमारे स्कूल के अंदर भी आपने देखा होगा, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड, इस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते आस्ते आस्ते जो भी स्टूडेंट होता है उसको तैयार करते हैं। उसके बाद मैट्रिक की एग्जाम होती है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, इस प्रकार का जो भी होता है, यहाँ 10+2+3, इस प्रकार से एक क्रमबद्ध और लॉजिकल शिक्षा की पद्धति और प्रणाली में होता है। इसके कारण क्या होता है, स्टूडेंट्स उन बातों को समझ सकते हैं और उसके आधार पर कार्य कर सकते हैं और उसकी बुद्धि चल सकती है। तो बाबा भी इसी प्रकार से, आज आप विचार कीजिए कि बाबा ने जिस ज्ञान के लेवल तक हमको लेके आए हैं, अगर वही पहले दिन से आज का ही जो ज्ञान का लेवल जो है पहले दिन अगर बता दिया होता, तो पहले दिन हमको कहा होता कि नहीं, सृष्टि इतना लंबा नहीं है, 5000 वर्ष की है सृष्टि, ऐसा आत्मा ऐसा है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ऐसे पहले दिन कह दिया होता तो 1937 में आकर के कहा हुआ होता तो हम स्वीकार नहीं करते, एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसा प्रयोग भूतकाल में, इतिहास में हो चुका है। 14th सेंचुरी के अंदर जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर ऐसे विचारक हो गए, मार्टिन ल्यूथर जैसे विचारक हो गए, जिन्होंने उस समय की जो भी क्रिश्चियन धर्म की प्रणाली जो थी, जो रिचुअल्स जो थे, जो कर्मकांड जो थे, उसके ऊपर इन्होंने अपना विरोध प्रकट किया कि ये सब झूठी बातें हैं, उसके जिस प्रकार से कुछ नहीं है, इस प्रकार का इन्होंने उसको डिस्कार्ड कर दिया। परिणाम रूप क्या हो गया, परिणाम रूप यही हो गया कि समाज जो है धर्म शून्य, श्रद्धा शून्य और चरित्र शून्य समाज बन गया। कारण क्या है कि जूनी जितनी भी प्रणाली जो थी, रिचुअल्स, कर्मकांड आदि थे, उनके ऊपर की लोगों की श्रद्धा तोड़ना और बहुत सहज बात है। एक कोई आज भी मैं किसी को किसी के बारे में विश्वास है वो तोड़ना बहुत सहज बात है, परंतु विश्वास बैठाना, हमारे पास ऊपर पीस पार्क है उसमें लिखा हुआ है कि 5 पीढ़ी का संबंध जो होता है, रिलेशनशिप जो होता है, वो 5 मिनट के क्रोध के द्वारा आप भस्मीभूत कर सकते हो। माना संबंध बनाने में 5 पीढ़ी लग जाती है, इतनी मेहनत करनी पड़ती, बनाना जो है कंस्ट्रक्शन करना है, पर तोड़ने में 5 मिनट का क्रोध जो है आपका 5 पीढ़ी का बना हुआ संबंध जो है ना वो 5 मिनट में आप तोड़ सकते हो, जला सकते हो, भस्मीभूत कर सकते हो। तो इसी प्रकार से जो भी 14वीं सदी तक धर्म के ऊपर, क्रिश्चियन धर्म के ऊपर जो भी लोगों की श्रद्धा थी वो इन्होंने तोड़ दी, परंतु नई विचार प्रणाली जो है उसके ऊपर श्रद्धा बिठाने का जो ताकत जो चाहिए, विचार वैचारिक शक्ति जो चाहिए, उनके पास ऐसा बुद्धि बल चाहिए वो नहीं था, और परिणाम रूप क्या हो गया आज के जमाने में पश्चिम की दुनिया में जो धर्म शून्य, श्रद्धा शून्य, कैरेक्टर शून्य जो समाज जो हो गया है, उसका एक कारण, अनेक और कारण भी है, उसमें एक मुख्य कारण यही है कि मार्टिन लूथर आदि ने समाज की उन बातों के ऊपर श्रद्धा तोड़ दी। बाबा ने भी ऐसा ही किया, बाबा ने क्या किया, पुरानी बातों पर हमारी जो श्रद्धा थी वो तोड़ी, परंतु ऐसे आस्ते आस्ते तोड़ दी कि कब परिवर्तन हुआ मालूम ही नहीं है। हमारे पास जब बाबा बम्बई में आए हुए थे तो बाबा ने एक बार क्लास में पूछा सभी बच्चों को कि जो गीता का भगवान कृष्ण है अभी तक उसको मानने वाले हाथ खड़ा करे, ऐसा क्लास में सवाल पूछा, तो एक माता ने हाथ खड़ा किया कि बाबा मैं कभी भी ये नहीं मानूंगी कि गीता का भगवान शिव है, गीता का भगवान कृष्ण ही है। तो बाबा ने उसकी श्रद्धा तोड़ी नहीं, बाबा ने कहा ठीक है बच्ची तुम क्लास में आती रहना, तुम्हारी जो भी मान्यता है उस मान्यता के आधार पर चलती रहना, परंतु क्लास में आती रहना, आस्ते आस्ते तुम ज्ञान की सब बातें समझ जाएगी। तो हो गया, इसके बाद 2-3 साल के बाद एक दिन मैं क्लास करा रहा था, गीता का भगवान के बारे में आया, तो मैंने भी सवाल पूछा कि अभी तक गीता का भगवान कृष्ण है ऐसा मानने वाले कौन है वो हाथ खड़ा करे, तो किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, वो माता ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैंने उस माता से पूछा कि आपने तो ब्रह्मा बाबा के सामने कह दिया था कि मैं मर जाऊंगी, परंतु मैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ऐसा नहीं मानूंगी, मैं तो मानूंगी गीता का भगवान कृष्ण ही है। तो आपकी ये जो श्रद्धा जो थी गीता का भगवान कृष्ण, उसके बदले में गीता का भगवान शिव हो गया, वो कब परिवर्तन हुआ? तो सोचने लगी कि मेरा परिवर्तन कब हुआ, फिर आकर ने कहने लगी मुझे मालूम नहीं है, पिछले 2-3 साल रोज मुरली सुनते सुनते मेरी जो पुरानी श्रद्धाएं जो थी उसमें परिवर्तन ऑटोमेटिक हो गया। तो ये बाबा की एक खूबी है कि बाबा जो है ना लॉजिकली एक आदर्श शिक्षक है, इनसे सीखने की जरूरत है, आदर्श सदगुरु है, जिसके आधार पर क्या हो गया कि बाबा ने पुरानी बातों के ऊपर की विचारधारा के ऊपर परिवर्तन कराया, परंतु श्रद्धा शून्य समाज निर्माण नहीं किया। आज हमारे जितनी श्रद्धा, वैचारिक शक्ति, शास्त्रों के ज्ञान, हमारी ईश्वरीय ज्ञान की बात जो भी कहो, इन सब के ऊपर वास्तविक दृष्टिकोण हमारा जितना है, रैशनल आउटलुक जितना है, इतना दुनिया में और किसी भी नहीं होगा। इसका कारण यही है कि शिव बाबा ने एक आदर्श शिक्षक बन करके हम सबको उसी लेवल पर आस्ते 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 इसी लेवल पर लाया है। तो इसलिए ये सफलता के पीछे में भी बहुत लंबी कहानी है, इस लंबी कहानी के ऊपर क्लास कराना हो तो कम से कम 3-4 दिन चाहिए, तब मालूम पड़ेगा कि इस लेवल पर कैसे आए। परंतु मैं तो पिछले साल की ही अव्यक्त मुरली, क्योंकि पिछले साल की मुरली के ऊपर बाबा ही स्लोली एंड स्लोली बिल्डिंग, जैसे मकान बनता है, 3rd फ्लोर बना उसके बाद 4th फ्लोर बन सकता है, उसके बाद 5th फ्लोर बन सकता है, ऐसा तो नहीं कि सीधा ही 5th फ्लोर बनाना शुरू करें, हो सकेगा ऐसा बन ही नहीं सकता है, पहले ग्राउंड फ्लोर बनाना पड़ता है, 1st, 2nd, 3rd फ्लोर, 4th, 5th, इस प्रकार से बनाना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है, ये बाबा इस प्रकार से करते हैं। तो पिछले साल की ही मुरली की बात बताऊं, पिछले साल बाबा ने अव्यक्त मुरली में 2 बार कहा हुआ है कि बच्चे अभी आप जानते हैं हम बच्चों को योग के द्वारा 8 शक्तियां प्राप्त होती है, मालूम है ना सबको, सभी जगह पर आपने चित्र पढ़ा होगा, योग से 8 शक्ति समेत कहीं है, सामना करने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ऐसे 8 शक्तियां है। उसके अंदर बाबा ने कहा कि एक जो शक्ति जो है समेटने की शक्ति, उसका प्रयोग अभी करना शुरू करो, बाकी सभी शक्तियां जो है ना जीवन के हर पहलू में आएंगा, सामना करने की शक्ति, ये सारी बातें, पर समेटने की शक्ति कब काम में आती है? तो जीवन के अंत के समय पर, विश्व परिवर्तन के समय पर, ऐसे समय पर जो हमारी बिखरी हुई चीजें जो है, बिखरी हुई सारी दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे बिखरी हुई होंगी, क्योंकि सफल करना है ना, सफल करने के लिए चीज तो हमारे पास चाहिए ना। अगर हमें समेटा हुआ नहीं होगा, अगर हमने समेटा हुआ नहीं होगा तो सफल क्या करेंगे, किसको सफल करेंगे? हमारे पास समेटी हुई शक्ति होगी, समेटी हुई हर प्रकार की बातें होगी, तो हम उसको सफल कर सकेंगे। जैसे कल बाबा ने कहा, श्वास को सफल करो, समय को सफल करो और ज्ञान को सफल करो। परंतु ये सब समेटा हुआ होगा तब हम सफल कर सकेंगे ना। समेटा हुआ नहीं होगा, हमारा अभी भी कारोबार जो है दुनिया की इन सब बातों के ऊपर चलता होगा तो कहां से होगा? तो इसलिए समेटने की शक्ति के आधार पर अभी आगे का कदम जो है वो बाबा ने बताया, समेटने की शक्ति के बाद सफलता की। समेटने की शक्ति नहीं इस्तेमाल की हुई होंगे तो क्या होगा? हमने इसके ऊपर ज्ञानामृत के आर्टिकल समेटने की शक्ति का हमने इसमें लिखा हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग ऐसा मानते हैं कि अंत समय में भगवान याद आना चाहिए, ये आना चाहिए, बहुत जरूरी है, परंतु भगवान कब याद आएगा? कई लोग समझते हैं भगवान बुद्धू है, भगवान में अक्ल नहीं है, इसलिए क्या करते हैं भक्ति मार्ग में है? अंत समय भगवान याद आवे इसलिए क्या करते हैं? अपने बच्चे का नाम नारायण रखते हैं। भाई क्यों नारायण रखा? तो अंत समय पर अपने हम अपने बच्चे को याद करेंगे, नारायण नारायण नारायण, भगवान समझेगा मुझे याद किया, इसलिए भगवान मदद के लिए आ जाएगा। ऐसा समझ करके अपने बच्चे का नाम रख लेते, ऐसा लोग समझते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अंत समय में भगवान याद आवे, बाबा ने देखिए, बाबा ने कल भी बताया कि कितना सुंदर सफल कर दिया, अंत तक का समय सफल कर दिया। उस दिन यीशु दादी को पूछिए, 18 जनवरी के सुबह तक जितने भी कागज लिखना था वो तो सबका 11-12 बजे तक बैठ करके सभी पत्रों का जवाब लिख दिया। यीशु दादी को पूछते कि और कभी कुछ रहा है? अभी कुछ रहा है, अभी कुछ रहा है। इस प्रकार से जो भी काम पेंडिंग था सारा ही काम पेंडिंग काम पूरा कर दिया। और बाबा ने जैसे कहा कि अंत में भी, अंत में यहाँ आकर के बाबा ने हिस्ट्री हॉल के क्लास में से विदा लेते हुए भी निराकारी निर्विकारी वो सारी बातें जो कही वो कही, अंत तक अपना सफल किया। परंतु अंत तक क्या हुआ? अंत समय में अपना लौकिक कारोबार याद नहीं आया, लौकिक परिवार नहीं आया, याद आया ये ईश्वरीय परिवार भी याद नहीं आया। अंत समय में क्या बोला बाबा ने? बाबा ने यही कहा, शायद लगता है मैं बाबा के पास जा रहा हूँ, बाबा के पास जा रहा हूँ, वही उनके मुख से अंतिम शब्द निकले और बाबा के पास चले गए। इतने तक समेटने की शक्ति का उपयोग किया हुआ था कि ताकि अंत समय में बाबा की साकार मुरली में 2-4 दिन पहले ही आया हुआ था। ऐसी भी गीता है कि जिसके अंदर अंत समय में अपनी पत्नी या पति याद आएगा तो क्या होगा, बच्चे याद आएगा तो क्या होगा, अपनी धन संपत्ति होगी याद तो क्या होगा, ऐसी भी गीताएं हैं। और ये हकीकत है, अंत समय जो है समेटा हुआ नहीं होगा। पश्चिम की फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी के बहुत बड़े प्रखर उसके एक स्थापक सोक्रेटिस, सुकार्ट जिसको हिंदी में कहते हैं, सोक्रेटिस जो है उसने भी नई नई ज्ञान की बातें सुनाई हुई थी। जैसे क्राइस्ट को क्रूसीफाइड कर दिया, इसी प्रकार से सोक्रेटिस को भी विष पॉइजन दे दिया गया था, और वो पॉइजन दे दिया, उसको जेल में रखा हुआ था, वो जेल से भाग जाने की बहुत मार्जिन भी था, परंतु उसने कहा नहीं, मैं नियम को नहीं तोड़ूंगा। जिस दिन उसको पॉइजन देकर के उसकी हत्या करने की थी, उसी दिन उसके शिष्य आदि जो है, प्लेटो आदि सभी आजू बाजू बैठे हुए थे, और जेलर जो है उनको अंतिम जो जैसे मीरा के लिए गया ना, राणा ने विष का प्याला भेजा, वो भजन आप जानते होंगे, इसी प्रकार से जेलर भी जो है विष का प्याला, पॉइजन का प्याला कटोरा लेकर के आया, वो उन्होंने पी लिया, पी करके उसने वापस दिया और पॉइजन की इफेक्ट होने शुरू हो गई, पांव के ऊपर जो चेतन था वो चला गया, पेट तक का चेतन जो है वो चला गया, और अंतिम 2-4 सेकंड बाकी रही हुई थी, उसी टाइम पर प्लेटो ने, उसका जो पट्ट शिष्य था प्लेटो, जो बाद में बहुत प्रसिद्ध हुआ, प्लेटो भी सोक्रेटिस के बाद प्लेटो सेकंड नंबर आता है विचारधारा में, तो ये प्लेटो जो है उसने सोक्रेटिस को पूछा है कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है? अंतिम इच्छा है, अभी इतना महान फिलोसोफर, उसको अंतिम समय पर भगवान याद आना चाहिए ना। इतने सुंदर फिलोसॉफी की बातें कही हुई है, जिसके कारण ग्रीस के अंदर वहां के युवान जो है, युवा शक्ति जागृत हो गई। वो भी जो है ना, उसका अंतिम क्षण कैसे हुआ? सोक्रेटिस, प्लेटो ने लिखा हुआ है सोक्रेटिस के जीवन के बारे में, अंतिम समय में मैंने इनसे पूछा कि आपकी कोई अंतिम इच्छा है, तो सोक्रेटिस ने कहा कि हाँ, मेरी पत्नी जो है ना, उसकी पत्नी का नाम था जयपति, तो जयपति को कहना कि हमने पड़ोसी से 3 मुर्गी उधार ली हुई थी। आप जानते हैं पश्चिम में तो नॉन वेज खाते हैं, तो 3 मुर्गी जो है वो उधार ली हुई थी, उनको कहना वो 3 मुर्गी जो है उसको पड़ोसी को वापस दे दे। तो क्या हुआ, कौन याद आया? जयपति याद आई, पड़ोसी याद आया, 3 मुर्गी याद आई, और उनसे ली हुई उधार चीज है उसको वापस देना, वो याद आया, भगवान याद नहीं आया। ये हकीकत है। इसलिए अगर समेटा हुआ नहीं होगा और अंतिम क्षण हमारे सामने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर उधर सारी जगह पर फैला हुआ होगा। कि अगर समेटा हुआ नहीं होगा तो अंत समय में बुद्धि उधर उधर भटकेंगी, इधर वो इधर है, वो इधर है, वो इधर है चीजें, उसके अंदर बुद्धि जाएंगी, बुद्धि भटकेंगी, परंतु एक पिता परमात्मा में बुद्धि स्थिर नहीं होंगी। इसलिए समेटने से पहले पहला फर्स्ट स्टेप यही है कि हमें अपना कारोबार को जितना हो सके इतना समेटा हुआ है या नहीं है। समेटा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? सफल करने के लिए हमारे पास साधन कहाँ से होंगे, शक्ति कहाँ से होगी? हर चीज इधर उधर फैली हुई होंगी, बिखरी हुई होंगी, तो काम कहाँ से कैसे हम करेंगे? क्योंकि आखिर में इन समेटे हुए चीजों को ही हमको सफल करना है। सफल करने से ही क्या होगा, हमारा सफल हो जाएगा और सफलता को हम प्राप्त कर सकेंगे। एक सेकंड के लिए सोच लीजिए कि विनाश का समय हो गया है, विनाश के समय पर आपकी चीजें इधर उधर समेटी हुई होंगी, तो आप सब सफल कैसे कर सकेंगे? हमने इसलिए ज्ञानामृत में लिखा हुआ है कि अंतिम समय जो है, अंतिम समय दो प्रकार से आ सकता है। एक तो अपनी खुद की अंतिम अवस्था है, अंतिम समय है, शरीर जो है, जैसे कई हमारे बहन भाई एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, इस प्रकार से खुद की अंतिम अवस्था ये भी हो सकती है। और दूसरी जो है वैश्विक अंतिम अवस्था, बाबा ने बताया हुआ है। और ये वैश्विक अंतिम अवस्था का साक्षात्कार तो पहले दिन से, जब से बाबा ने ज्ञान का कारोबार शुरू किया उस दिन से अंतिम अवस्था जो है, वैश्विक अंतिम अवस्था का साक्षात्कार कराया हुआ है। ब्रह्मा बाबा ने भी पहला जो साक्षात्कार किया, आप सबको मालूम है, हमने बच्चों के बाबा की किताब में ये दिखाया हुआ भी है, चित्रांकित किया हुआ है कि ब्रह्मा बाबा ने वहाँ समुद्र के सामने बैठे हुए थे, सारा जो आकाश जो था वो सारा ही स्क्रीन बन गया, और स्क्रीन बनने के बाद उसमें बाबा ने देखा, विनाश का साक्षात्कार किया पहले। आप सबको मालूम होगा ब्रह्मा बाबा की कहानी, न पढ़ी हो तो आप बच्चों के बाबा किताब पढ़ लेना, यहाँ तो आदिदेव किताब भी पढ़ लेना, उसमें हमने बच्चों की बाबा की किताब में सारा दिखाया हुआ है, चित्रों के द्वारा, जगदीश भाई ने शब्दों के द्वारा आदिदेव किताब के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। तो वो जो बाबा ने विनाश का सारा साक्षात्कार किया, और विनाश का साक्षात्कार करते हुए बाबा ने खुद ने अपने शब्दों में हमको बताया था कि मैं भी डर गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये खून की नदियां बह रही है, इस प्रकार से हो रहा है, ये क्या हो रहा है। परंतु थोड़े समय में वो दृश्य जो है वो गायब हो गया उनके नजरों के सामने से, साक्षात्कार की उस भूमिका में, और फिर आकाश में से सितारे आने लगे और सितारों में से फरिश्ते जैसे देवताएं बाहर निकलने लगे, और देवताओं की दुनिया का, सतयुगी दैवी दुनिया का साक्षात्कार बाबा को हुआ, और उसको देख करके बाबा बहुत प्रसन्न चित्त हो गए। और इतने में बाबा ने सुना कि ये सब बातों के लिए, ये परिवर्तन के कारोबार के लिए आपको निमित्त बनना पड़ेगा। और बाबा ने खुद ने हमको डेमोन्स्ट्रेट करके बताया कि जब मैंने ये सुना तो मैंने ऐसा हाथ करके कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए लायक नहीं हूँ, मैं इसको कर नहीं सकता हूँ, ऐसा बाबा ने एक्टिंग करके, जैसे उस टाइम पर उस दृश्य को देखा इस प्रकार से ऐसा करके हमको दिखाया। तो मैंने कहा, बाबा फिर क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने तो मना किया, परंतु इसलिए बाबा ने कहा है कि मैंने कई बार मुरली में कहा है कि वाट वेंदो ब्राह्मण फत्तो, मतलब चलते चलते बाबा मेरे में प्रवेश हो गए, मेरे को कभी पूछा भी नहीं और कारोबार में मुझे लगा दिया। तो इसलिए बाबा विश्व परिवर्तन के कारोबार के लिए निमित्त बन गए। परंतु कहने का तात्पर्य यही है कि पहले दिन से, पहले से ही, पहला पहला साक्षात्कार से ही बाबा ने वैश्विक अंतिम अवस्था का साक्षात्कार करा दिया है और उसके लिए साधन आदि जो एटम बॉम्ब आदि जो भी आप जानते हैं वो तैयार कर दिए। और अगर इसका इस्तेमाल हो जाएगा तो क्या होगा, हमारी चीजें हमें समेटी नहीं हुई होंगी तो हम सफल कैसे करेंगे। बाबा ने और भी एक वार्निंग दे दिया है। हम बॉम्बे निवासियों को तो कई बार मुरली में ये सुनने को मिला है कि अंतिम समय में बॉम्बे जो है वो पानी में जाएगा। पढ़ा होगा आप सबने, पढ़ा है ना आप सबने कि बॉम्बे जो है, इसलिए मैं कई बार आप सबको निमंत्रण देता हूँ कि बॉम्बे देखना हो तो आप अभी आ जाइए। संगम युग में बॉम्बे देख सकेंगे, दिल्ली तो सतयुग में भी देख सकेंगे, परंतु बॉम्बे सतयुग में नहीं देख सकेंगे, अभी देख सकेंगे क्योंकि बॉम्बे पानी में जाने वाला है। तो पानी में कैसे जाएगा, कैसे जाएगा, 2-4, 10-15 इंच पानी गिरेगा इससे पानी में जाएगा क्या? पानी में जाने का एक तरीका है, रहस्य है, एक प्रक्रिया होने वाली है, वो कैसे होगी? क्योंकि ये वैश्विक परिवर्तन के लिए जो है ना, बाबा ने पहले से ही बताया हुआ है, कल्प वृक्ष के चित्र में ऊपर दिखाया हुआ है तीन बातें, इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर्स। ये बाबा ने शुरू से ही आदि पिक्चर जो आदि जो कल्प वृक्ष गोला और त्रिमूर्ति का जो झाड़ का जो पिक्चर जो तीनों दो तीन पिक्चर जो है वो हमारे शुरू के आदि के फंडामेंटल पिक्चर्स है। उसके ऊपर बाबा ने विश्व परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत स्पष्ट शब्दों में लिख दी है, इंटरनेशनल एटॉमिक वॉर, नेचुरल कैलेमिटीज और सिविल वॉर। तो नेचुरल कैलेमिटीज कैसे होगी, हमने ज्ञानामृत में आज की दुनिया के वैज्ञानिक लोगों का अभिप्राय लिखा हुआ है कि नेचुरल कैलेमिटीज में क्या हो सकता है। क्योंकि एक बात है कि पृथ्वी जो है अभी अपनी धरी जो है, एक्सिस जो है, उसके ऊपर 23.5 डिग्री का एंगल पर ऐसी टेढ़ी खड़ी है, सूर्य सामने है, सूर्य के सामने ऐसी टेढ़ी अवस्था में वो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती रहती है। और ये भी है कि सतयुग में सतयुग की जिस प्रकार की क्लाइमेट आबोहवा वायुमंडल जिस प्रकार की बाबा महिमा करते हैं, वर्णन करते हैं, जैसे कल भी कहा कि वहां अप्राप्त कोई भी वस्तु नहीं होंगी, तो इस प्रकार का क्लाइमेट होने के लिए पृथ्वी जो है अपने एक्सिस के ऊपर सीधी होनी चाहिए, 90 डिग्री के एंगल पर होनी चाहिए, ऐसी राइट हैंड इस प्रकार से होनी चाहिए। अभी पृथ्वी ऐसी टेढ़ी हो गई है, कारण पृथ्वी के दोनों उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर बर्फ आदि का वजन जो है ना वो बहुत हो गया है। इसके कारण ऐसा जैसे हमारा मेरे सिर में भी, मेरे शरीर पर, सिर पर बहुत बोझा होगा तो क्या होगा, मैं सीधा नहीं खड़ा रह सकूंगा, मैं थोड़ा टेढ़ा हो जाऊंगा। आप सबका अनुभव है, आपको भी बाल्टी उठानी होती है तो आप टेढ़े होते हो तब तो बाल्टी उठ सकती है, तो टेढ़ा हो जाते हैं ना। इस प्रकार से पृथ्वी भी जो पहले सीधी थी इसमें ऐसी टेढ़ी हो गई है। तो ये पृथ्वी जो है सतयुग के लिए सीधी होनी ही चाहिए, वो कैसे होगी, उसके लिए वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 5 एटम बॉम्ब उत्तर ध्रुव और 5 एटम बॉम्ब दक्षिण ध्रुव के ऊपर गिराया जाए तो उसकी जो न्यूक्लियर हीट जो है, अणु शक्ति के कारण जो गर्मी पैदा जो होगी, उसके कारण जो बर्फ उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के ऊपर है वो इतना पिघलेगा, इतना पानी 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 हो जाएगा कि परिणाम रूप जो है आज का जो समुद्र का जो लेवल जो है, सी वाटर लेवल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, समुद्र का पानी का जो लेवल जो है वो 96 फीट से 100 फीट तक बढ़ जाएगा, 96 फीट से 100 फीट तक और ऊपर बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, बॉम्बे एक तो सैंपल के रूप में बाबा कहते हैं, बॉम्बे माना ही जो समुद्र तट पर रहने वाले जो भी है, जिसको बंदरगाह कहते हैं, पोर्ट कहते हैं, उस प्रकार से बंदरगाह आदि जो भी है उसके ऊपर 96 फीट या 100 फुट, समझो मान लो 100 फुट पानी हो गया, तो 100 फुट पानी हो गया तो सब बंदर जो भी है, मतलब जो पोर्ट बने हुए है उसका क्या होगा, कोई भी पोर्ट पोर्ट के रूप में काम नहीं कर सकेगा। और दूसरा उसी प्रकार से आज देख लीजिए अर्थक्वेक की भी बात जो है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी कितने डैम्स बने हुए हैं, भाखड़ा नांगल डैम, अभी हम गए थे संबलपुर तो वहां नदी, महानदी के ऊपर भी एक डैम बना हुआ है, हीराकूट डैम बना हुआ है, कोयना डैम बना हुआ है, ऐसे बहुत से डैम देश विदेश में बने हुए हैं। क्या सतयुग में डैम्स होंगे? मेरा आप सबसे प्रश्न है, सतयुग में अभी के जितने डैम्स बने हुए हैं, कोयना डैम, भाखड़ा नांगल डैम आदि जो भी है, दामोदर नदी के ऊपर भी बहुत 6 डैम्स बने हुए हैं, इस प्रकार के जितने भी डैम्स बने हुए हैं वो डैम्स होंगे? एक छोटी सी बात है, सिरोही क्या जाते हैं स्वरूपगंज के पास जो है इसी नदी के ऊपर डैम बना हुआ है, पानी एक बार बहुत जोर से पानी आया, फ्लड हो गया, वो डैम टूट गया और कितना नुकसान करके गया। तो इस प्रकार से ये डैम जो है सतयुग में, आप सबका क्या राय है, सतयुग में डैम्स होंगे? तो नहीं होंगे तो कैसे क्या होगा उसका, कुछ ना कुछ तरीके से टूटने तो चाहिए ना, तो अर्थवेग आदि के द्वारा वो जब टूटेंगे तो क्या होगा, क्या होगा? भाखड़ा नांगल डैम टूट जाए तो क्या होगा? 700 फुट पानी है उसमें, उस डैम के अंदर 700 फुट पानी है, 700 फुट पानी एक साथ में गिर जाए तो कितना फ्लड, कितना क्या नुकसान कर देगा। तो इस प्रकार से ऐसे नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, उसके कारण क्या हो जाएगा, पोर्ट्स के रूप में नहीं होंगे, समुद्र के द्वारा जो भी कारोबार होता है वो कारोबार नहीं होगा। 85% ऑयल रिफाइनरीज जो है वो सब समुद्र किनारे है, क्योंकि ज्यादा करके ऑयल जो है समुद्र के अंदर से ही ज्यादा निकलता है, ज्यादा करके 85% वहां पर है। थोड़ी पॉलिटिकल कंसिडरेशन के कारण, जैसे मथुरा की ऑयल रिफाइनरी है मथुरा में, वो और बात है, थोड़ी वहां से आसाम से ऑयल निकलता है उसके बाद और है, बाकी 85% ऑयल रिफाइनरीज जो है पानी में चली जाएंगी। तो पानी में चली जाएंगी तो आपको डीजल कहाँ से मिलेगा, पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, तो हवाई जहाज नहीं चलेंगे, रेलवे कहाँ से चलेंगे? आज हिंदुस्तान में 80% रेलवे जो है वो डीजल पर चलती है, बाकी का बिजली और कोयला आदि के ऊपर 3% चलती है, तो कहाँ से चलेंगी वो? जब बाबा के सामने हमने सोलार जो है, सोलार के लैंप्स आदि के बारे में प्रस्ताव रखा, तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे उसके ऊपर आगे बढ़ो, इस क्षेत्र में आगे काम कीजिए, क्योंकि आखिर में ऊर्जा के रूप में सौर्य शक्ति ही काम में आने वाली है, उसके द्वारा ही कारोबार होगा। माना अंतिम समय में पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे, एरोप्लेन नहीं चलेंगे, ऐसे समय पर क्या होगा? ऐसे समय पर आपने समेटा नहीं हुआ होगा तो आप सफल कैसे करेंगे? आर्थिक अव्यवस्था इतनी हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज सब बंद हो जाएंगी, इंडस्ट्रीज के अंदर रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो क्या करेंगे? हमारे बॉम्बे के आजू बाजू में कुछ पैदा नहीं होता है, 100 माइल दूर से कम सब्जियां आदि जो भी है 100 किलोमीटर दूर से, नासिक पुणे या तो इधर सूरत भरूच से वहां से सब्जियां आती है, ट्रांसपोर्ट में नहीं आ सकेंगे, क्या हो जाएगा? और एक सिंपल बात है, दवाइयां नहीं बनेंगी, किसी को डायबिटीज होगा उसका क्या होगा, उसको इंसुलिन नहीं मिलेगा, ब्लड प्रेशर के मरीज को ब्लड प्रेशर की गोलियां नहीं मिलेंगी, ब्लड प्रेशर एकदम शूटअप हो जाएगा, डॉक्टर्स ऑपरेशन करना चाहे पर उसे इंस्ट्रूमेंट दवाइयां नहीं मिलेंगी, क्या होगा? आप उस अंतिम समय की परिस्थितियों को अपने सामने में लाइए, आर्थिक अव्यवस्था कितनी हो जाएंगी, सोशल प्रॉब्लम्स भी इतने आएंगे, उस समय पर क्या करेंगे? तो इसलिए ऐसे समय के लिए आए उसके पहले समेटा हुआ होगा तो अच्छा होगा, बाकी समेट करके समेटा नहीं होगा, किसी को दिया होगा और लोन के रूप में दिया होगा और किसी को दिया हुआ होगा। कपड़े का व्यापारी जो है बॉम्बे के अंदर, कपड़े का व्यापारी आज माल बेचता है, 6 महीने के बाद पैसा आता है, और 6 महीने के बीच में विनाश हो गया तो क्या होगा? धंधा धंधा की जगह पर रह जाएंगे। वास्तविकता ये है ना, हम दुनिया की बात कर रहे हैं, ज्ञान की अकेले की बात नहीं है, दुनिया की बातों के अंदर हम देखते हैं इस प्रकार से समेटा हुआ नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए सफल करना है तो उसके पहले समेटने की शक्ति का उपयोग करना पड़ेगा। समेटा हुआ होगा तो ही लौकिक कारोबार से भी हमारी बुद्धि हटी हुई होगी तो होगा, लौकिक कारोबार में भी नहीं तो ये याद आएगा वो याद है। हमने भक्ति मार्ग का ड्रामा बनाया था पहले पहले जब ज्ञान में हम आए, उसमें यही था, एक माता जो है राम राम जपती है, उसने में कहती है अरे बहू वो दाल जो है ना जरा देखना, फिर ये दूसरा कहना, उस प्रकार से हाथ में तो राम राम की माला थी परंतु बुद्धि जो है ना वो घर के कारोबार में उस रास की जो है बुद्धि भटकती थी। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ से होगा, और अंतिम समय में तो इतनी विकट परिस्थितियां होगी, उस समय पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा तो आप अपना समय कैसे सफल कर सकेंगे? इसलिए पहले से ही इन सब बातों का अभ्यास करना पड़ेगा, लास्ट मिनट पर कुछ नहीं हो सकेगा। बाबा ने उसका भी प्रयोग हमको कड़क करके दिखा दिया। बाबा ने फिर 2 साल पहले हम सभी को कहा कि मैं आपको 6 मास का टाइम देता हूँ और 6 मास के अंदर में आपको 75% संपूर्ण बनना है और मैं और मेरे बन के बारे में 100% सफल करना संपूर्ण बनना है। 6 मास के हिसाब से मई की 11 तारीख थी 2001 की। आप सबको मालूम है 12 मई को बाबा ने संदेश भेजा कि ठीक है बच्चे जो जितना सफल हुआ इतना हो गया, संपूर्ण बनना इतना हो गया। हमारे में से कितना 75% संपूर्ण उस 6 मास में बन गए बताइए। पहले से ही बताया हुआ था तो भी 6 मास के अंदर 75% संपूर्ण नहीं हो सके, ये करुण वास्तविकता है। और मैं और मेरापन जिसके बारे में कल भी बाबा ने कहा कि मेरा मेरा कहना है तो मेरा बाबा कहो नहीं, तो सारे दिन में कितनी बार मेरा 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 करते रहते हो। तो ये मैं और मेरापन के ऊपर 100% विजय प्राप्त करने के लिए कहा था। कहां तक हम सफल हुए, 6 मास का टाइम दिया हुआ था तो भी, तो अंतिम समय में इन सब बातों के ऊपर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे। सफलता माना ही विजय प्राप्त करने का, तो अंतिम समय में एक दिन में कैसा ऐसा अचानक हो जाएगा। 6 मास की टाइम लिमिट मिली हुई तो भी हम नहीं कर सके, इसलिए ये बात है। बाबा ने इसलिए एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है, अंतिम समय का इंतजार मत कीजिए, उसके पहले उसका इंतजाम कीजिए। हम सब इंतजार में बैठे हुए हैं। बाबा को पूछते रहते बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा, कब होगा, ऐसे जैसे समझते हैं कि लास्ट मिनट पर सब कुछ हम सफल कर देंगे। ये हकीकत में बताऊं आपको, ये नहीं हो सकता है। मैं वर्ल्ड जूनियर स्पिरिचुअल ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी हूं, तो 68 में उसकी स्थापना हुई, साकार बाबा के सामने ही हुई। यहां से नवंबर की 8 या 9 तारीख को मैं बॉम्बे चला गया उसको ट्रस्ट बनाना, रजिस्टर्ड करने के लिए। और बाबा ने एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन पत्रों के द्वारा देना शुरू किया, और पहला ही पत्र में यही लिखा था कि बच्चे तुझे मैंने पैसा स्वीकार करने का, मेरी ओर से पैसा स्वीकार करने की स्वीकृति अथॉरिटी दिया है, परंतु बच्चा ध्यान रखना, लेगा तो देना मुझे पड़ेगा, लेगा तो देना मुझे पड़ेगा, इसलिए मेरी जिम्मेदारी का ध्यान रख करके ही पैसा स्वीकार करना। इसलिए हम यज्ञ के कारोबार में पैसे को मिनिमम स्वीकार करते हैं। और इसलिए मैं आपको पूछूं बताऊं कि क्या अंतिम समय में आप सब पैसा सफल करने के लिए आएंगे, यज्ञ स्वीकार करेंगे, क्यों स्वीकार करेंगे, जरूरत से ज्यादा क्यों लेंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है, बाबा ने लिखा कि बच्चा लेगा तो देना मुझे पड़ेगा, यज्ञ स्वीकार करेंगे और बाबा कैसे देगा अंतिम समय में। आज भी कई लोग हमको जमीन ऑफर करते हैं, हम नहीं स्वीकार करते, ये जमीन काम की नहीं है, नहीं चाहिए हमको, हम नहीं, कई बातों में अभी यज्ञ जो है ना जो सोचता है कि स्वीकार करे नहीं स्वीकार करे। दादी जी आप पूछ लीजिए, अभी भी 2 दिन के पहले ही 150 गज 120 गज जमीन का हमने पूछा, एक भाई दे रहा है, बाप दादी ने कहा नहीं 150 गज की जमीन की ही होती है तो हम सोचेंगे। इस प्रकार से आज आस्ते आस्ते यज्ञ भी जो है ना अपना वैचारिक और आर्थिक बातों का स्तर ऊंचा करता जा रहा है, और उस टाइम पर अंतिम समय में आप आकर के लो बाबा पैसा रखो, आप यज्ञ कोई भी किसी का भी धन स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अंतिम समय तक आप अपना धन का, अंतिम समय पर आप आकर के अपना धन आदि को सफल करने के लिए तैयार हो जाओ, इम्पॉसिबल है। यज्ञ स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या होगा। इसलिए तो आपको मालूम होगा हमारी मम्मा कई बार कहती थी कि किसी की दबी रही धूल में, किसी की राजा खाए, किसकी आग जलाए और किसी की चोर लूट जाए, ये 4 बातें कही हुई थी। किसी की दबी रही धूल में, अर्थवेग आदि होगा तो क्या होगा, धूल में सब मिल जाएगा, किसी की आग जलाए, किसी की चोर लूट जाए, इस प्रकार की 4 बातें जो है किसी का मतलब, इस प्रकार का जो कारोबार होगा क्या होगा। हमारे भुज के अंदर अर्थवेग हुआ, गुजरात के अंदर अर्थवेग हुआ, अपने दैवी परिवार के एक भाई था, उसका बहुत सुंदर मकान बना हुआ था, 25-30 लाख रुपया खर्च करके उसने सुंदर मकान बनाया था, फर्स्ट फ्लोर पर रहता था और ग्राउंड फ्लोर में 10 बेड्स की हॉस्पिटल भी थी, बहुत सुंदर था। 26 जनवरी को अर्थक्वेक हुआ है, 25 जनवरी की रात को फर्स्ट क्लास अपने महल जैसे मकान में सोया हुआ था और 26 जनवरी को अर्थक्वेक हुआ, मकान उसका सारा ही पत्ता जो होता है ना प्लेइंग कार्ड पत्तों के माफी, उसका महल के माफी गिर गया। फिर भी क्या करेंगे, मकान के आजू बाजू ध्यान रखने के लिए 26 तारीख फुट मकान के आगे की फुटपाथ के ऊपर सोया। एक दिन में करोड़पति था उसका रोडपति बन गया, ऐसा भूकंप आदि का कारोबार होगा, क्या करेंगे? गोधरा में जो हत्याकांड हुआ रेलवे के अंदर, उसमें क्या हुआ, कड़ी के 6 माताएं वापस आ रही थी, थर्ड क्लास का डब्बा था, 6 सीट जो थी, 3 इधर और 3 उधर, 6 माताएं इकट्ठी थी। आग लगना शुरू हो गया तो सबने कहा चलो जल्दी जल्दी उतरो, जल्दी जल्दी उतरो। तो 4 बहनें जो है, 4 माताएं जल्दी जल्दी उतर गई। बाकी 2 ने कहा रे इतना हमारा सामान है, सामान के बिना क्या करेंगे। सामान लेने के लिए रुकी, इतने में वो लोग आ गए, दरवाजा बंद कर दिया और वो 2 माताएं अंदर जल गई। 11 सितंबर पिछले साल न्यूयॉर्क के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर 2 हवाई जहाजों ने जाकर के टक्कर लगाई। अपने दैवी परिवार के एक भाई था, राम प्रकाश भाई उसी बिल्डिंग में काम करते थे, 64वीं मंजिल में उनकी ऑफिस थी, उसके अपने डिपार्टमेंट के हेड थे। जैसे वो मकान के साथ एरोप्लेन ने टक्कर खाई तो उसने अपने स्टाफ को बोल दिया चलो छोड़ो काम, छोड़ो चलो भागो, क्योंकि बिजली बंद हो गई, सब बंद हो गया था। सीढ़ी उतरना था, 64 फ्लोर से नीचे में आना, 64वीं मंजिल से नीचे आना, कि मासी का घर नहीं था। उसने अपने पड़ोस के दूसरे डिपार्टमेंट की एक हेड, एक बहन थी, माता थी, उसको कहा कि मात बहन जी चलो मकान छोड़ करके चले, मकान में कुछ हुआ है। उसने कहा मैं अपना, राम प्रकाश भाई आप जाइए, मैं अपना थोड़ा ये कारोबार करके निकलती हूँ। 10-15 मिनट उसके लिए रुकी। परिणाम क्या हुआ, राम प्रकाश भाई और उनके साथी सब नीचे उतर गए, और वो माता और उसके कारण उनके स्टाफ मेंबर, क्योंकि अगर बॉस नहीं उतरता है तो स्टाफ मेंबर कैसे उतरेंगे, वो सब वहां के वहां रह गए, खत्म हो गए। तो अपना कारोबार 10 मिनट के अंदर, सामान जो है ना, वो माता है जो 2 जल मरी, या तो ये राम प्रकाश भाई के साथी जो है मर गए, कारण क्या था वो समेटना, जो 1 सेकंड में समेट करके चलो आगे का कारोबार करो, वो 1 सेकंड में नहीं कर पाए और इसके कारण खत्म हो गए। तो इसलिए कहने का भाव यही है कि बाबा ने जब कल कहा हुआ है कि समेटने की शक्ति का उपयोग करेंगे तब सफल होगा। अभी सफल कैसे होगा, सफल कैसे होगा? कल बाबा ने भी कहा, पैरामीटर्स में 3 एग्जाम्पल दिए कि अगर अपना जो भी है आप अपना समय जितना सफल करेंगे इतना क्या होगा, आपका सत्युग में आपका राज कारोबार भी इतना ही अविरत रूप में, नॉन स्टॉप के रूप में कारोबार चलेगा। आप कभी कभी अपना सफल समय सफल करेंगे तो वहां का कारोबार, राज्य का कारोबार भी आपको कभी कभी मिलेगा। ऐसे ही बाबा ने कहा कि जिन्होंने अपना स्वास्थ्य सफल किया हुआ होगा उसको वहां पर 21 जन्मों के लिए स्वास्थ्य ठीक मिलेगा, हृदय का अटैक नहीं आएगा, या श्वास नली अंदर जो नलियां जो है वो ब्लॉकेट जो हो जाती है जिसके कारण बाईपास सर्जरी करानी पड़ती है, वो सब नहीं होगा। और ज्ञान जो है, ज्ञान माना ही समझ, तो इसके कारण बाबा ने कहा जिन्होंने ज्ञान का अच्छे में अच्छा सफल किया हुआ होगा उनका क्या होगा, उनको वहां पर वजीर, मंत्रिमंडल। आज तो बाबा ने कहा, कल बाबा ने कहा कि आज तो मतलब मंत्री शपथ, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, औथ लेते हैं, और फौरन जो है वो मंत्रिमंडल बनाना पड़ता है। तो ये बातें जो है वो सफल कैसे होगी, अंतिम समय के समय पर आज की ईश्वरीय सेवाएं जो है वो कहां से काम में आने वाली है। आज हम जो ईश्वरीय सेवाएं करते हैं, क्योंकि सेवा के द्वारा ही सफल होगा ना। पैसा का ऐसी चीज है उसको खा भी नहीं सकते। हमारे प्योर गुजराती शब्दों में कहूं तो कुत्ते भी जो है ना पैसों को सूंघते नहीं है। इस प्रकार से ऐसा खाली पैसा पैसे के रूप में कभी सफल नहीं होता है, उसका रूपांतर करना पड़ेगा, कारोबार में रूप में, साधन के रूप में, या तो साधना के रूप में रूपांतर करना पड़ेगा। अब इसलिए सेवा की जरूरत पड़ती है। सेवा होगी तो सेवा के द्वारा ही आपके स्वास्थ्य सफल हो गए, आपके ज्ञान सफल होगा, आपका जो भी है तन मन धन आदि जो भी हो सेवा के माध्यम के द्वारा, सेवा वो साधन है जिसके द्वारा आपका सफल हो सकता है। अभी सेवा कैसे करेंगे अंतिम समय में, अभी अपनी प्रदर्शनियां जो है, क्या अंतिम समय में हम प्रदर्शनियां कर सकेंगे, लोग देखने के आएंगे? भुज में जो तूफान हुआ उसके अर्थक्वेक हो गया, उस टाइम पर महाप्रदर्शनी करते तो कौन देखने के लिए आता था? न्यूयॉर्क के अंदर ऐसा जो हो गया, दोनों बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के गिर गए। उस टाइम पर प्रदर्शन नहीं करते थे, यहाँ रिट्रीट रखते थे, यहाँ कॉन्फ्रेंस रखते थे, यहाँ सेमिनार रखते थे, यहाँ डायलॉग रखते थे, यहाँ कहते थे पॉजिटिव थिंकिंग का क्लास रखो, यहाँ वैल्यूज का क्लास रखो, इसके ऊपर ट्रेनिंग कोर्स रखो। क्या हो सकता था, कोई आएगा क्या? इसलिए अभी की जो ईश्वरीय सेवाएं जो है वो शांति समय की ईश्वरीय सेवाएं, जिस शांति समय की ईश्वरीय सेवाएं करने से हमारा सफल होता है, स्वास्थ्य सफल होता है, तन मन धन जो है शांति समय की ईश्वरीय सेवा करने से। क्योंकि जिसको जिसके प्रति हम सेवा करते हैं वो लोग तो होने चाहिए ना। खाली आप प्रदर्शनी कर दो, कोई देखने वाला नहीं होगा, तो क्या आपकी प्रदर्शनी सफल हो गई? कॉन्फ्रेंस रख लिया, हॉल भी बुक कर लिया, कॉन्फ्रेंस में सुनने वाला बोलने वाला कोई नहीं होगा, खाली हॉल में जाकर के आप अकेले बैठ जाओ, इनसे क्या आपका सफल होगा क्या? तो इसलिए नए प्रकार की ईश्वरीय सेवाएं अंतिम समय के लिए ढूंढनी पड़ेंगी, निर्माण करनी पड़ेंगी, ये हकीकत है। अभी की जितनी सेवाएं हैं वो शांति समय की सेवाएं हैं, अशांति के समय की सेवाएं क्या होगी? इसका अनुभव हमको बाबा ने बॉम्बे में करा दिया था। एक बार क्या हो गया कि बॉम्बे में रायट्स बहुत हो गए, हिंदू मुसलमान के बीच में बहुत झगड़े हो गए, इसलिए सरकार ने कर्फ्यू डाल दिया। 5 दिन तक नॉनस्टॉप कर्फ्यू रहा, बीच में 1-1 घंटा छुट्टी देते थे ताकि लोग जो है दूध सब्जी आदि कुछ ला सके। 23 घंटा घर में बैठना पड़ा 5 दिन तक। तो उस टाइम पर मैं सोचने लगा कि अभी ऐसे समय पर जब कर्फ्यू है बाहर नहीं निकल सकते, उस समय पर हम कौन सी ईश्वरीय सेवा करके कैसे हम अपना समय सफल करें, कैसे हमारा बुद्धि बल सफल करे, कैसे करें? कर्फ्यू के टाइम पर नहीं हो सकता, तो इस प्रकार से अशांति के समय पर क्या होगा? अशांति के समय की ईश्वरीय सेवाएं वर्तमान ईश्वरीय सेवाओं से अलग होगी, परंतु उस टाइम पर उसका निर्माण नहीं कर सकते। अभी से ही ऐसी अशांति समय की ईश्वरीय सेवाओं का निर्माण करना होगा, तब तो उस समय पर हम उसी ईश्वरीय सेवाओं को करने से हम अपना तन मन धन जो भी है उसको सफल कर सकेंगे। अभी अशांति समय की ईश्वरीय सेवाएं हमको पूरी नहीं आती है। मैंने पिछले टाइम हमारे भाई बहनों से पूछा था कि अभी हमारे पास कोर्सेज है, SML ट्रेनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, वैल्यूज एजुकेशन का प्रोग्राम है, पॉजिटिव थिंकिंग का है, और चौथा है स्ट्रेस फ्री लिविंग। इस प्रकार से ये 4 कोर्सेज है। ये 4 कोर्सेज में से कितने भाई बहनों को सभी चारों ही कोर्स आते हैं? मैं अभी सारी सभा को पूछ रहा हूँ, हम फिर से बोलता हूँ, SML ट्रेनिंग आप जानते हैं बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 100 मार्क का पेपर उसके लिए रखा हुआ है। दुनिया में कई हजारों जगह पर SML ट्रेनिंग का कार्य हमारे उषा बहन आदि ने, बहुत सी बहनों ने किया हुआ है, करा रहे हैं। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के बारे में, वैल्यूज का भी चलता है। तीसरा है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक चिंतन का है, उसके बारे में भी कोर्सेज चलते हैं, और स्ट्रेस फ्री लिविंग, तनाव मुक्त जीवन। ये 4 कोर्सेज है। 7 दिन का कोर्स तो सबको आता होगा, क्योंकि वो तो प्रीलिमरी है, बेसिक है, परंतु उसके अलावा आगे का जो है 4 कोर्सेज जो है, ये शांति समय की ईश्वरीय सेवा के साधन है। ये किसको आता है? क्योंकि कल बाबा ने जो कहा ना, श्वास को सफल करना, इसे कोर्स कराने से ही होगा ना, प्रजा कैसे बनेंगी? प्रदर्शनी भी समझाने के लिए प्रदर्शनी करानी पड़ेगी, सिखानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, गाइड आते रहेंगे। मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा था कि शांति समय की ईश्वरीय सेवाएं जो है, जिसके द्वारा हम अपना तन मन धन को सफल कर सकते हैं, उसके अंदर ही हमारी मास्टरी नहीं है, वो हम नहीं कर सकते हैं, तो अशांति के समय की ईश्वरीय सेवाएं कैसे कर सकेंगे? इसके लिए उसकी भी विधि आदि सीखनी पड़ेगी, उसका निर्माण करना पड़ेगा। तीसरी बात ये भी एक सोचने की है कि सफल करने का कहाँ तक का करने का है, हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? सफलता तो है ही है, पर सफलता का अंतिम स्वरूप क्या है? तो अंतिम स्वरूप ये भी है सफलता का कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है, बराबर है? ये कोई नई बात नहीं मैं कह रहा हूँ। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा, परमो धर्म, ये सतयुगी दैवी दुनिया की वो मापदंड है कि हमें 16 कला संपूर्ण बनना है। याद है ना आप सबको, 16 कला संपूर्ण बनने का लक्ष्य सबका है कि किसी का 14 कला के भी है संपूर्ण बनने का? हाँ, किसी का 14 कला संपूर्ण बनने का हो वो तो हाथ खड़ा करें। जैसे बाबा पूछते हैं ना, लक्ष्मी नारायण बनना है या राम सीता बनना है, तो सभी लक्ष्मी नारायण का ही कहते, लक्ष्मी नारायण माना है 16 कला संपूर्ण। और बाबा ने अभी पिछले शनिवार की साकार मुरली में बाबा ने एक हिसाब किताब सिखाया हुआ था, आप सबको याद होगा। दादी जानकी ने तो उस दिन कहा भी सही कि ये हिसाब किताब तो मेरे भी ख्याल में नहीं था, बाबा ने पहले भी बताया होगा, मैं भूल गई थी। ये है कि सत्युग में 16 कला और त्रेता युग में 14 कला, माना 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है, बराबर है, ये तो सबको मालूम है। 16 कला से 2 कला 1250 वर्ष में कम होती है। तो बाबा ने पिछली शनिवार या इसके पहले के शनिवार ऐसी, मतलब पिछले 10-15 दिन के अंदर ही शनिवार की मुरली में था, तो उसमें बाबा ने यही कहा कि 15 कला संपूर्ण बनेंगे तो क्या होगा। याद होगा वो हिसाब किताब, जो रोज मुरली पढ़ते होंगे या सुनते होंगे उनको मालूम होगा कि 15 कला संपूर्ण बने तो क्या होगा। 625 वर्ष बाबा ने कहा हुआ है, हिसाब स्पष्ट शब्दों में कहा हुआ है, बहुत स्पष्ट शब्दों में बाबा ने सबको बता दिया कि 15 कला संपूर्ण बने तो 625 वर्ष कम होंगे, आधा सत्युग चला जाएगा। सत्युग में है 8 जन्म, ये तो मालूम है ना सबको, सत्युग में 8, त्रेता में 12, मतलब पहले 21 जन्म होते हैं और फिर 63 जन्म जो है वो द्वापर और कलयुग में 63 जन्म, वो तो सबको हिसाब मालूम है। इसलिए 8 जन्म में से आधा सत्युग चला जाएगा तो क्या होगा, कितने जन्म चले गए, हाँ जी 4 जन्म चले गए, कौन से 4 जन्म, शुरू के या अंतिम के, कलयुग के 4 जन्म तो कम नहीं होंगे ना, कलयुग के तो जो रहेंगे द्वापर कलयुग के 63 हो तो 63 रहेंगे ही सही, मतलब सत्युग त्रेता के जो 21 जन्म जो है उसमें से पहले 4 वर्ष चले जाएंगे। लक्ष्मी नारायण कौन से जन्म में होंगे, लक्ष्मी नारायण पहले जन्म में होंगे ना, तो आप चौथे जन्म के बाद 5वें जन्म में आएंगे तो आप लक्ष्मी नारायण को साकार रूप में देख सकेंगे, अपने आप से पूछिए। एक बार एक अव्यक्त बाप दादा के सामने एक माता रो रही थी, सामने में बैठी हुई थी रो रही थी, तो बाबा ने उस माता को पूछा कि माता जी तुम बहन क्यों, तो आप माता जी आप क्यों रो रहे, तो माता ने कहा कि बाबा मैंने आपको साकार रूप में नहीं देखा इसलिए मैं रो रही हूँ। तो बाबा ने बहुत सुंदर उसको कहा, मैं जो मेरे दिल पर वो छप गई है बात। बाबा ने उनको कहा कि परंतु नहीं देखा वो ठीक है, अभी तो तुम मुझे देख रही है ना, तो वर्तमान को भूतकाल की बातों के आधा दुखी क्यों कर रही है, अभी तो वर्तमान का सुख ले ले, अभी तो तू मेरे सामने चेतन में, मैं भी साकार में हूँ तुम भी साकार में हो, साकार में मुझे देख रही उसका तो सुख ले ले, भूतकाल के दुख के कारण साकार में नहीं देखा उसके कारण वर्तमान में दुखी क्यों हो रही है। ये हमारे सबके जीवन की यही बात है, हम भूतकाल की बातों के आधार पर वर्तमान को सुखी नहीं करते हैं परंतु ज्यादा करके वर्तमान को दुखी करते हैं, ये करुण वास्तविकता है। हम अपने वर्तमान को भूतकाल के कारण दुखी करते, पुरानी बातें इसलिए तो कई क्या होता है, अरे इसने इतना ऐसा किया, आप कितनी पुरानी पुरानी बातें याद रखते हैं। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, हम तो पुरानी बातों के आधार पर वर्तमान को दुखी करते हैं। और फिर बाबा ने उस माता को कहा जो हम सब के लिए है, बाबा ने कहा कि ये तो अभी ड्रामा में नोंद हो गई कि तुम साकार में ब्रह्मा और सरस्वती को नहीं देख सकेंगे, परंतु अभी भी मार्जिन है तीव्र पुरुषार्थ करने का, अभी भी मार्जिन है कि तुम सत्यु की आदि रत्नों में आ जाओ, आदि प्रजा में आ जाओ, तो सत्युग में शिव बाबा मैं अपने लक्ष्मी और नारायण को देख सकेंगे। अगर तीव्र पुरुषार्थ नहीं किया, 16 कला संपूर्ण नहीं बने, 15 कला संपूर्ण बने तो क्या हो जाएगा, पहले 4 जन्म चले जाएंगे, माना क्या होगा, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा और लक्ष्मी 8 जन्म लक्ष्मी नारायण के और वो तो हो गए, और लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो पहला लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती के रूप में पहला लक्ष्मी नारायण को तो पहले 4 जन्म चले गए तो क्या देख सकेंगे। इसलिए बाबा ने उस माता को कहा अभी भी तीव्र पुरुषार्थ कर ले, नहीं तो हमेश के लिए ड्रामा में नोंद हो जाएंगी कि ब्रह्मा सरस्वती को या लक्ष्मी और नारायण को तुम जड़ चित्रों में मूर्तियों में और मंदिरों में ही देख सकेंगी, उसको चेतन में नहीं देख सकेंगी। जो इस माता को बाबा ने कहा ये हम सब के लिए यही है, हम इतने तक अपने अपना जो भी तन मन धन है उसको इतने तक सफल करें कि हम 16 कला संपूर्ण बने और सत्यु की आदि प्रजा में, आदि रॉयल प्रजा को जो भी कहो उसमें हम आ जाए, नहीं तो क्या हो जाएगा। लक्ष्य लक्ष्य ही रहेगा, लक्ष्य जो है लक्षण के रूप में हम कभी भी उसका अनुभव नहीं कर सकेंगे। फिर जैसे वो माता रो रही थी ने, इस प्रकार से हम रोएंगे। इसका एक मार्जिन है। एक भाई को हमने पूछा कि धर्मराजपुरी में जाना है, एक बार एक क्लास में पूछा था, सबने कहा हमको धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, परंतु एक भाई ने कहा, बहुत हिम्मतवान था, उसने कहा मैं तो धर्मराजपुरी में जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, तो कहा मैंने ब्रह्मा बाबा और सरस्वती माता को उनको साकार में नहीं देखा है, धर्मराज सतयुग में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा मुझे मालूम नहीं है, पर धर्मराजपुरी में जाऊंगा तो बाबा के राइट हैंड के रूप में ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए होंगे ना, वहां तो देखने को मुझे मिल जाएगा। आप सबको ये भविष्य मंजूर है, ताली तो बजाते हो, ताली क्यों बजाई, मंजूर है इसलिए धर्मराजपुरी में जाना है ब्रह्मा बाबा और मातेश्वरी को देखने के लिए। क्या विचार है कि सतयुग में जाकर के देखना चाहते हो, कहाँ इतना मैं मेरा अंदाज से मैं कह सकता हूँ, जो धर्मराजपुरी में जाएगा ना वो सतयुग में जाकर के लक्ष्मी नारायण को नहीं देख सकेगा। ये मेरी मान्यता है, सच है या नहीं भगवान जाने, बाबा जाने, परंतु ये इतना कह सकता हूँ कि धर्मराजपुरी के द्वारा उसको क्रॉस करके जाए और बात है, धर्मराजपुरी में जाकर के ट्रिब्यूनल में बैठे हो और बात है, जज बन करके बैठना और बात है, मुजरिम बन करके बैठना कठिन है। तो इस प्रकार से ये भी हमको नक्की करना है कि हमारा भाग्य हम इतने तक उसको सफल करें, हमारे साधन जो भी है इसको इतने तक सफल करें, हमारी साधनाएं भी इसको भी इतने तक सफल करें कि हम 16 कला संपूर्ण बने और सतयुग की दैवी सृष्टि में शुरू से आएंगे। इसको ये आइडियल स्टेज है सफलता की, अभी भी मार्जिन है, सफलता हो सकती है। हम बाबा ने भी कहा है लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट, हाँ पहली गद्दी फिक्स है, बाकी की कोई भी गद्दी फिक्स नहीं है, अभी भी मार्जिन है पुरुषार्थ के अंदर, अभी भी मार्जिन है, नहीं तो क्या हो जाएगा आखिर में, क्या हो जाएगा। अभी तो राम सीता भी नहीं बनने वाले, आखिर में क्या कहेंगे, अरे जो भी मिला वो ठीक है, ऐसा जो भी मिला वो उसका ठीक, इसके कारण क्या हो जाएगा, ऐसा अपने तकदीर को हम तो कहते हैं तकदीर जगा करके आए हैं, और ऐसा न हो कि हमारी तकदीर के ऊपर हमें रोना पड़े। एक बात तो बहुत स्पष्ट है, हमने जब योग की प्रदर्शनी बनवाई ना, तो लास्ट पिक्चर योग की प्रदर्शनी के जिसके द्वारा विश्व की सेवा शुरू हुई, तो ये लास्ट का पिक्चर के लिए बाबा को हमने लिखा, ब्रह्मा बाबा को, कि बाबा ये लास्ट का पिक्चर का आइडिया और उसकी लिखत आप बना करके भेजो। बाबा को भी बहुत इंटरेस्ट आता था इस बातों में मदद करने के लिए, तो बाबा ने लास्ट चित्र की जो है ना, पृथ्वी जो है वो अंतिम अवस्था में है, एटम बम ऊपर है इस प्रकार से, और नीचे की लिखत बना करके भेजा कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। क्या लिखा बाबा ने, क्या मैटर लिखी, आपका भविष्य आपके हाथों में। इसका अर्थ क्या हो गया, हमारा भविष्य हम ही बना सकते हैं, हमारा भविष्य और कोई न बना सकता है न कोई बिगाड़ सकता है। ये बात तो सही है ना, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैन टेक हॉर्स टू द रिवर, घोड़ा जो है उसको आप पानी तक, नदी तक लेके जा सकते हो, आप पानी पियेंगे घोड़े के पेट में पानी जाएगा, जाएगा ऐसा, ऐसा कोई साधन है नहीं कि आप पानी पियो और उसके पेट में जाए, घोड़े को ही पानी पीना पड़ेगा, ही मस्ट ड्रिंक द वॉटर, यू कैनॉट ड्रिंक वॉटर ऑन बिहाफ ऑफ योर हॉर्स। ये हकीकत है, इसी प्रकार से दुनिया में सब जगह पर होता है, हमारा भाग्य जो है हम सफल करके इतने तक का श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहते हैं कि नई दुनिया के अंदर लक्ष्मी नारायण की आदि प्रजा के अंदर आ जाए कम से कम। तो हमारा भाग्य हम ही बना सकते हैं, हमारा भाग्य जो है ना, भर्तृहरि ने भी कहा हुआ पर्वोदाती कुबुद्धि रेशा, अब दूसरे किसी के आधार पर मेरा भाग्य बना या बिगड़ा ऐसा मानना ये कुबुद्धि, ये गलत भ्रांति है। इसलिए ये भ्रांति में हम न रहे कि हमारे बदले में और कोई पुरुषार्थ कर लेगा, हमारा पुरुषार्थ हमारे कर्मों का हिसाब किताब हमें ही चुकतू करना पड़ेगा। आपको मालूम है ना वाल्मीकि कहानी, तो मालूम है ना वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखा मालूम है ना, वो पहले क्या था, हाँ वालिया कोली के रूप में डाकू था, याद है मालूम है सबको। और नारद जी मिल गए, हमें भी ऐसा कोई नारद जी मिल जाए तो अच्छा है। नारद जी मिल गए, नारद जी ने कहा कि तुम ये डाकूगिरी करता है, इतना पाप इकट्ठा करता है, तेरे परिवार वाले उसमें सहयोगी है, याद है ना कहानी कि भूल गए हो। तो वाल्मीकि ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, मेरे पति पत्नी बच्चे आदि जो भी है वो सभी पाप में हाँ भागीदार है, पार्टनरशिप में है। तो कहा जाओ जाके पूछ के आओ। तो उसने नारद जी को वृक्ष के साथ रस्सी से बांध दिया और वो अपने मियाँ अपनी पत्नी बच्चे को सबको पूछने के लिए गया। फिर क्या हुआ, हाँ उनकी पत्नी सब यहाँ माताएं बैठी हुई है, वाल्मीकि की पत्नी ने क्या बोला कि हाँ हम भी उस पाप में भागीदार है। हाँ जी ऐसा बोला नहीं है, इस प्रकार से आपके पति आदि पाप कर्म करके जो भी करते हैं उसमें आप भागीदार बनेंगे। तो इस प्रकार से वाल्मीकि बेचारा वापस आया। तो यही बात हमारे लिए भी है, हम कई बार कितने भी कर्म करते हैं उसमें कई अनेक प्रकार के विकर्म करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, औरों के लिए अनेक प्रकार के बातें बोलते हैं, कई बार झूठ का इस्तेमाल कर लेते हैं। इनसे क्या होता है, जो विकर्म बनता है उसके जिम्मेदार हम ही हैं, सत्कर्म के भी जिम्मेदार हम ही हैं, तो हमारे विकर्मों के भी जिम्मेदार हम ही हैं। अभी तक अज्ञान काल में जो भी विकर्म किए उसको योग के द्वारा भस्मीभूत कर सकते हैं, परंतु अभी तो जैसे एक अच्छे कर्म का 100 गुना या 1000 गुना फल देने के लिए बाप तैयार है, उस प्रकार से एक गलत काम किया सफलता के बदले में असफलता के रूप में कुछ हो गया तो इसका भी दंड भी इतना ही पड़ने वाला है। एक बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा हुआ है कि बच्चे अभी आपकी वाणी जो है ना वरदानी बन गई है, आपकी वाणी आपके शब्द वरदानी बन गए हैं, हाँ परंतु ध्यान रखना। बाबा ने मिसाल दिया है छुरी जैसा कि छुरी सब्जी जो होती है ना आप छुरी के द्वारा काटते हैं, तो छुरी के द्वारा सब्जी काट भी सकते हैं, तो छुरी के द्वारा आप श्राप भी दे सकते हैं, और श्राप देंगे तो क्या होगा, उसका विकर्म जो बनेगा उसके जिम्मेदार कौन होंगे, हम ही होंगे। हमारी वाणी के ऊपर हमारा इतना ध्यान है कि हम वाणी के द्वारा किसी को श्राप न दे दे, फालतू बातों में न दे दे, कभी गालियां आदि कुछ भी क्रोध आदि भी न कर ले, इतना हम अपने लिए जागरूक है। जितना बाबा ने सावधानी दिया हुआ है कि आपकी वाणी जो है उसको सफल करो, हाँ उसके द्वारा किसी को वरदान दो, वाणी को भी मनसा वाचा जैसे तन मन धन है ऐसे ही मनसा वाचा कर्मणा, तो कर्मणा और वाणी, वाणी को भी इतनी ही सफल करनी पड़ेगी कि हमारी वाणी वरदानी बने, इतने तक सफल करना पड़ेगा। और सफल करने का दूसरा साधन मैंने कहा ना मनसा वाचा कर्मणा, कर्म ऐसा करे श्रेष्ठ कर्म, वाणी ऐसी करे हमारी वाणी वरदानी बने। और मनसा वाचा मनसा अंतिम समय की जो सेवाएं की बात जो मैंने निकाली ना उसके अंदर बाबा ने भी कल भी कहा रेफरेंस दिया था मनसा सेवा का, अंतिम समय में आपको मनसा सेवा के द्वारा ही कारोबार करना पड़ेगा, अंतिम समय में आपको साक्षात्कार मूर्त बनना पड़ेगा, अंतिम समय में हमारे पास एक और साधन है जिस साधन की साधना हमारे में से बहुत कम बहन भाइयों ने किया हुआ है, जिसके बारे में अव्यक्त बाप दादा ने एक मुरली में एक दो मुरली में रेफरेंस दिया हुआ है कि अंतिम समय के समय पर आप सबके अपना सूक्ष्म शरीर भी है। जब गुलजार दादी वतन में जाती है तो कई बार कहती है सभी बच्चों को बाबा ने इमर्ज किया, दादियों को इमर्ज किया, तो कौन से रूप को इमर्ज किया, हमारे सूक्ष्म स्वरूप को इमर्ज किया। जिस सूक्ष्म शरीर जो हमारा ही स्वरूप है, वो हमारा ही सूक्ष्म शरीर जो है जिसको अंतवाहक शरीर भी बाबा ने शब्दों में कहा हुआ है। तो एक तो मनसा सेवा की सेवा के बारे में भी अब से ही हमारे पास ताकत होनी चाहिए कि मनसा सेवा के द्वारा हम अपना सफल करें तन मन धन को, और ऐसे ही हमारे अंतवाहक शरीर के द्वारा भी हम अपने उसको सफल करें। इसमें क्या होगा, दादी जानकी को मैंने कई बार कहा दादी आप बाकी सब बातों के क्लास कराते हो, आपके दादी जानकी उसमें एक्सपर्ट हैं अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा करने की। तो ये अंतवाहक शरीर के द्वारा सेवा कैसे करेंगे। दूसरा है अभी हम नींद इतनी करते हैं, हमारा निंद्रा योग है, सफल करना है तो नींद को भी सफल कर सकते हैं, उसको योग निंद्रा में परिवर्तन करो। आज हम 5-5, 6-6 घंटे सोते हैं, शरीर को थकावट होती है, आत्मा को थकावट नहीं होती है। तो योग निंद्रा के द्वारा अगर कारोबार करेंगे तो योग में भी आपको मालूम होगा, कृष्ण जो है, कृष्ण को किसी ने पूछा कि आपको अर्जुन क्यों प्यारा है, याद है महाभारत पढ़ा होगा, उसमें कृष्ण को पूछा गया आपको अर्जुन क्यों प्यारा है, तो कहा मैं तुमको लेके चलता हूँ। तो अर्जुन जो है ना सोया हुआ था, अर्जुन सोया हुआ था तो वहां कृष्ण उनको लेके गए, तो अर्जुन के गले से आवाज आता था, कृष्ण 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 कृष्ण। ये आपने कहानी पढ़ी होंगी, थोड़ा तो भक्ति किया होगा ना, हमारी जितनी नहीं किया होगा पर थोड़ी तो किया होगा, याद है अर्जुन नींद में भी कृष्ण कृष्ण कर रहा था, देखा तो कहा देखो नींद में भी ये मुझे याद कर रहा है, ऐसा मेरा ये भक्त है। हाँ समय भक्त प्रिया है, मुझे मेरा भक्त इसमें प्रिय है कि जो मुझे नींद में भी याद करते हैं इस प्रकार से। और इसके कारण ऐसे ही भक्तों को लिए गीता में कहा हुआ है कि नमे भक्त प्रणश्यन्ति, तो ख्याल आया ऐसे अर्जुन हाँ नींद में भी, ये इसको कहते हैं योग निंद्रा, कि जिस योग निंद्रा के अंदर भी हम बाप को याद कर सकते हैं, इस योग निंद्रा के अंदर भी हम अंतवाहक शरीर के द्वारा ईश्वरीय सेवाएं कर सकते हैं और अपना तन मन धन सफल कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा और दादी जानकी भी कहती है कि नींद और खाना ये जितना भी हम बढ़ाना चाहे इतना बढ़ा सकते हैं और जितना कम करना चाहे इतना कर सकते हैं। ऐसे ही कोई भी बात बनती है ना, दादी जी दादी जानकी भी ये कह रही है कि कोई भी बात बनती है उसको जितनी बढ़ाना है, रज का गज, गुजराती में रज का गज करते हैं, या गज का भी रज करना हमारे हाथों में है, हम उसमें एक्सपर्ट है। छोटी बात को बड़ी बात करना हम उस बात में एक्सपर्ट है, हम बड़ी बात को छोटी कर रहा इसमें ही शक्ति की जरूरत है, इसमें भी समझ की जरूरत है, इसमें ही पुरुषार्थ की जरूरत है। हमारा समय इसमें ही चला जाता है, हम छोटी बात के कारण इतने हम परेशान हो जाते हैं, इसमें इतना हमारा बुद्धि योग विचार सागर मंथन चला जाता है, हमारी अवस्था बिगड़ती है। इसके कारण क्या होगा, ऐसे अंतिम समय पर हमारी अवस्था बिगड़ती रहेंगी, व्यवस्था बिगड़ती रहेंगी, हम कहाँ से आगे बढ़ेंगे, कैसे हम सफल कर सकेंगे। इसलिए अपने आप से पूछिए, अपने चार्ट रखिए और उसके द्वारा देखिए कि सारे दिन में हमारी अवस्था कहाँ तक और कितनी बिगड़ी, जिनकी अवस्था बिगड़ती होंगी वो कैसे संपूर्ण रूप से सफल करेंगे आप ही बताइए, और जिनकी व्यवस्था शक्ति इतनी अच्छी नहीं होंगी वो भी कैसे सफल कर सकेंगे। इसलिए अवस्था और व्यवस्था इन दोनों के बातों के ऊपर भी हमारी मनसा वाचा कर्मणा तीनों का ही पूर्ण रूप में आधार है। हमारी अवस्था कैसे होनी चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। और एक और बात भी है कि संपूर्ण तो बन गए तो साथ साथ नई दुनिया का कारोबार करने के लिए उसके भी अनुभव का प्राप्ति अभी से ही होना चाहिए। अगर नई दुनिया के कारोबार के लिए उसकी भी विधियां जो है ना अभी से सीखनी पड़ेंगी, उसके लिए तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, रॉयल रूप में बाबा बैठा देगा, विश्व का कारोबार के लिए निमित्त आपको नहीं बनाएगा। इस प्रकार से ये भी विधि विधान जो है ना, आप यहाँ कहीं मेहता बहने बैठी है, टीचर भी थोड़ी बैठी हुई, टीचरों को मालूम होगा लौकिक दुनिया का आपका घर घर का कारोबार और ईश्वरीय सेवा में संपूर्ण बन समर्पित हो गए, उसके दोनों प्रकार के जीवन में फर्क है या नहीं, पहले का जीवन और समर्पण जीवन में फर्क है। इस प्रकार से अभी का जीवन और सतयुग के जीवन में फर्क होगा, सतयुग की दुनिया का कारोबार कौन करेगा, हम बच्चों को ही करना पड़ेगा। बाबा का कितना सुंदर प्लानिंग है कि ब्रह्मा बाबा को अव्यक्त इसलिए बनाया कि नई दुनिया के कारोबार के लिए अभी से ही उसको ट्रेनिंग दे रहे, हर बात में साथ में रखते, इसलिए तो बाप दादा कहने में आता है, हम भी बाप और दादा ब्रह्मा बाबा को दादा शिव बाबा के साथ रखते हर कारोबार में। इस प्रकार से बाबा नई दुनिया के विश्व राज्य विश्व के कारोबार की स्थापना में मददगार के रूप में ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऐसे हमें भी इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। मैंने ज्ञानामृत के अंदर लिखा हुआ है कि इस विश्व के नए विश्व के कारोबार के लिए अब से ट्रेनिंग नहीं ली हुई होंगी तो प्रश्न जब आपके सामने हमारे सामने आएगा हम फंबल हो जाएंगे, कहेंगे अरे ये कैसे हम कर सकेंगे, ये तो हमको आता नहीं है। मैंने ज्ञानामृत में लिखा हुआ है जिसके बारे में भी आर्टिकल में कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ और जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन गए, वल्लभ भाई डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बन गए, मौलाना आजाद एजुकेशन मिनिस्टर बन गए, ये किताब में लिखा हुआ ट्रांसफर ऑफ पावर बाय मिडनाइट जो इंग्लैंड के दो ऑथर ने लिखा हुआ है किताब, उसमें लिखा हुआ है। तो उस टाइम पर भारत में बहुत ही रायट्स बहुत हो गए, हिंदुस्तान मुसलमान का बहुत प्रश्न हो गया, कई हजारों लाखों लोग मर गए और भारत सरकार उसको कंट्रोल करने में असफल रही। तो जवाहरलाल नेहरू ने इमरजेंसी मीटिंग रविवार के सुबह बुलाई और सोचा कि ये सीक्रेट रिपोर्ट आया कि इतने हजारों लोग मर रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर सकती, पुलिस कुछ नहीं कर सकती है, मिलिट्री कुछ नहीं कर सकती, तो क्या किया जाए। तो उस टाइम पर कैबिनेट के अंदर ये प्रश्न आया और उसका सुझाव आया कि हम लॉर्ड माउंटबेटन उस टाइम पर वाइसरॉय के रूप में चालू थे, तो उनके हाथ में सत्ता दे दे और उनको कहे कि आप जोश प्रकार से भी कारोबार करना चाहिए कीजिए, परंतु ये रायट्स आदि जो खून की नदियां बहती है उसको कंट्रोल कीजिए, बंद कीजिए। इन्होंने फौरन जो है ना रेजोल्यूशन बनाया, कागज बनाया और शाम को 4 बजे की अपॉइंटमेंट लॉर्ड माउंटबेटन की मिल गई और उनके पास गए और जवाहरलाल नेहरू ने वो कागज उनके हाथ में दिया और कहा कि आप सत्ता फिर से संभाल लीजिए। माउंटबेटन ने कहा मैं क्यों संभालू, मैं तो ऐसे ही अभी रबर स्टैम्प के माफिक यहाँ बैठा हुआ हूँ थोड़े दिन के लिए, आपका कोई भी वाइसरॉय के रूप में या प्रेसिडेंट के रूप में आ जाएगा मैं चला जाऊंगा, अभी तो सत्ता आपके हाथों में, आप संभालिए, आप कारोबार ऐसा कीजिए रायट्स आदि जो भी उसको कंट्रोल कीजिए। तो नेहरू ने कहा कि हमें उसका अनुभव नहीं है, हम तो सारी जिंदगी जो है ना आपके सामने ब्रिटिश राज्य को भगाने के लिए उसकी मेहनत में पड़े, आधी जिंदगी हमारी जेल में गई, आधी जिंदगी हमारी असहकार की मूवमेंट आदि में चली गई, हमको राज्य कारोबार संभालने की अक्कल ही नहीं, अनुभव ही नहीं। और आपको तो आप जो लॉर्ड माउंटबेटन जो थे जो जापान के सामने में कंबाइंड फोर्सेस जो थे उसके कमांडर इन चीफ थे और इन्होंने ही जापान के ऊपर विजय प्राप्त करने का सारा कारोबार उसकी बागडोर जो है उन्होंने संभाली हुई थी। तो उन्होंने कहा, नेहरू ने कहा आपको तो इसका अनुभव है इसलिए आप इसको संभालिए, हम कह रहे हैं ना, आप कहां मांग रहे, हम कह रहे हैं भारत के बहन भाइयों की तरफ से कह रहे हैं। और फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कारोबार किया, 5-7 दिन में ही भारत में शांति हो गई। इसी से सीखने का, ऐसा ही नए विश्व का कारोबार हमको बाबा दे दे के चलो बच्चे आपको संभालना है और आप गए बाबा इम्पॉसिबल, हम तो सारी जिंदगी माया के सामने युद्ध करने में ही गए और हम तो माया के सामने युद्ध करने में ही अपने को संपूर्ण बनाने में ही गए, संपूर्ण दुनिया का कारोबार कैसे करना चाहिए वो सिखाए नहीं तो क्या होगा। इसलिए सफल करो माने इतने तक सफल करो कि नई दुनिया के कारोबार के लिए भी आप हम सब अपने आप को लायक करें, तब 100% सफलता हुई। मैंने पिछले बार अपना एक अनुभव बताया हुआ था कि ये सेवा केंद्रों के खोलने के बारे में हम अभी तक तब तक मैं मानता था कि दादियां ही कर सकती है। मैं बॉम्बे में था और मॉरिशियस से फोन आया, हमारे वेदांती बहन आदि लुसाका से मॉरिशियस ईश्वरीय सेवा करने के लिए गए थे, लुसाका माना जाम्बिया करके जो वहां जहां से अफ्रीका की सेवा शुरू हुई थी, और राम भाई वेदांती बहन आदि सभी 15 दिन के लिए वहां रहे, बहुत अच्छी ईश्वरीय सेवा हुई। और शुक्रवार रात को 10 बजे बॉम्बे में हमको फोन आया, वेदांती बहन राम भाई आदि जो भी उनकी सारी पार्टी थी, रावल भाई थे, सब ने हमको फोन किया कि रमेश भाई यहाँ बहुत अच्छी सेवा चलती है, अभी यहाँ हमको आज शाम को एक मकान मिला हुआ है, इस मकान के लेकर के हम यहाँ पर सेंटर की स्थापना करें या न करें। आप हाँ कहेंगे तो हम मकान का कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, किराया पर ले लेंगे, ना कहेंगे तो कल सुबह हमारी 6 बजे की फ्लाइट है, उसके द्वारा हम वापस लुसाका चले जाएंगे, आप बताओ हम यहाँ सेंटर खोले या ना खोले। हमने कहा भाई साहब इसका मुझे अनुभव नहीं है, इसके बारे में तो निर्णय दादियां करती हैं या बाबा करते हैं, आप कहो तो मैं दादियों से पूछ करके, मैं 2 दिन के बाद जाने वाला हूँ, पूछ करके फिर आपको बताऊं। इन्होंने कहा दैट इज इम्पॉसिबल, अभी मकान मिल रहा है, मकान लेना ही पड़ेगा, यहाँ तो छोड़ना पड़ेगा। हमने कहा ले लो, इसके बाद 15 दिन 3 दिन के बाद छोड़ देना। कहा ये भी पॉसिबल नहीं है, मकान का कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का करना पड़ेगा, 3 साल तक हम छोड़ नहीं सकेंगे, आपको 3 दिन के बाद छोड़ देना, ये भारत नहीं है ये मॉरिशियस है। तो मैंने कहा पर ये तो दादियां निर्णय करती है, बाबा करते, मैं तो नहीं करता, मुझे मालूम नहीं है आपको वहां मॉरिशस में खोल सकते या नहीं खोल सकते। तो कहा आपको ही बताना होगा, नहीं तो कुछ नहीं। तो मैंने बाबा को याद किया, मैंने कहा मालूम नहीं है, मैं अनाधिकारी चेष्टा करता हूँ या क्या करता हूँ। मैंने कहा ठीक है आप कर लो, अगर मना होंगी जो भी दंड होगा मैं भोग लूंगा, पर तो आप खोल लो। उन्होंने मकान ले लिया, सेंटर खुल गया। दो दिन के बाद मैं मधुबन में आया, अव्यक्त बाप दादा की बदरावनी हुई थी। मैंने बाबा के सामने अपने ये गलती का एहसास किया, कहा बाबा हमने गलती किया कि ऐसे दादियों से पूछे बिना और आपसे पूछे बिना ऐसे मॉरिशस सेंटर का मकान का हमने हाँ के दिया। तो बाबा ने फिर से पूछा किसने हाँ किया, मैंने कहा मैंने हाँ किया। तीन बार बाबा ने पूछा, मैंने समझा मालूम नहीं है बाबा सुनते क्यों नहीं है, घड़ी घड़ी पूछते किसने बोला। मैं तीन बार बोला मैंने किया मैंने किया मैंने। बाबा ने कहा नहीं तुमने नहीं किया, तेरे द्वारा तुम्हारे द्वारा मैंने उसको छुट्टी दिया। इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं नए विश्व के कारोबार की। मैं वास्तविकता बताऊं, बाबा ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हो गए ना, तब हम बहुत से सवाल जवाब जो है संदेश के रूप में बाबा से पूछते थे, मार्गदर्शन लेते रहते थे। आस्ते आस्ते बाप समान बनना माना, बाप समान निर्णय और बाप समान कारोबार करने की शक्ति डेवलप करना। तो आज हम बहुत कम बातें जो है बाबा से पूछते हैं, अनेक बातों का निर्णय करने की शक्ति हमारे में बाबा ने डेवलप कर दिया है, अनुभव करा दिया है। तो इसलिए संपूर्ण बनना माना, संपूर्ण बनने के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय, क्योंकि ये भी है कि अगर हमने गलत निर्णय किया तो भी हम भी उसके लिए जिम्मेवार होंगे। तो इसलिए जो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, सारी दुनिया के अंदर आज दुनिया में कोई भी जज गलत निर्णय दे देगा उसको कोई दंड नहीं हो सकता है। मतलब यज्ञ के अंदर अगर आपने गलत निर्णय दिया और उसके कारण सामने वाले ने गलती किया, उसके लिए निर्णय देने वाले जिम्मेदार होंगे। सारी दुनिया में ऐसी व्यवस्था जो है किधर भी नहीं है। इतने यज्ञ में ही बाबा ने यह नियम बनाया हुआ है कि आपको इतना संपूर्ण अपने आप को कारोबार में बनाना पड़ेगा कि आप कोई गलत निर्णय नहीं ले सकते, अगर लिया इसके जिम्मेदार आप होंगे। दुनिया के अंदर कोई भी जगह पर धंधे आदि किसमें भी कोई भी निर्णय करने वाला बिजनेस में भी होता है कोई जिम्मेदार नहीं होता है। यहाँ बाबा हम बच्चों को इसलिए जिम्मेदार करते हैं कि सच्ची की दुनिया के अंदर हम कोई भी ऐसा गलत निर्णय न करें। इस प्रकार की ट्रेनिंग बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। बाबा इसलिए मैंने शुरू में ही कहा आदर्श शिक्षक है, आदर्श शिक्षक करके हमको इतने तक सफल और संपूर्ण बनाते हैं कि नए विश्व का कारोबार हम सर्वश्रेष्ठता के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप से, हम बाबा ने जैसे कल कहा ना नव जीवन, इस प्रकार से नई दुनिया का नव जीवन, नई दुनिया का नया कारोबार आदि को अच्छे में अच्छी रिश्ते कर सके, इतने तक हम अपने आप को सफल और संपूर्ण करें, यही हमारा लक्ष्य है। तो कल की मुरली के आधार पर तभी इसकी सार्थकता है। मुरली तो सबने सुनी सन्मुख में सुनी हुई है, तो सन्मुख में जब सुनी हुई तो गुरु दक्षिणा के रूप में ये तो नक्की करना होगा ना कि हाँ बाबा हम अपना जो कुछ है उसको 100% सफल करके संपूर्ण बन करके सतयुगी सृष्टि की आदि में आएंगे। बराबर है ये निर्णय, हाँ किसी को करना आदि नहीं है, सतयुग में नहीं आए त्रेता के आदि में आए तो भी चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से इतने तक सफलता का सार जो है, रहस्य जो है उसका विचार सागर मंथन करके आप भी उसके बारे में आगे करिए, बात करिए। ओम शांति।